بسم الله الرحمن
الرحيم. الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى، عدد ما تحب وترضى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری عمر میں اللہ نے برکت عطا فرمائی، اور یہ شعبان کا مہینہ مجھے اور آپ کو نصیب ہوا. انشاءاللہ بہت جلدی رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اتنی زندگی اور عمر مل جانا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت اور احسان ہے. یہ 2 سال جو امت کے اوپر گزرے، اس میں ساری دنیا کے اندر لوگوں نے دیکھ لیا کتنی جلدی جلدی لوگ دنیا سے چلے گئے، اور اس کے اندر کوئی عمر کی بھی پابندی نہیں. جوان لوگ چلے گئے، بچے بھی دنیا سے چلے گئے. اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی اس نعمت پر دھیان دینا چاہیے کہ زندگی ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت میں ساری نعمتیں چھپی ہوئی ہیں. ہم نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، علم حاصل کریں گے، سبق پڑھیں گے، پڑھائیں گے، جماعت میں جائیں گے، عمرے میں جائیں گے. ساری نعمت کا تعلق عمر کے ساتھ ہے کہ یہ زندگی اگر ہے تو یہ ساری نعمت ہے. اگر زندگی ہی نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ نے آپ کو اور مجھے عمر میں برکت دی، شعبان کا مہینہ عطا فرمایا، اور بہت جلدی انشاءاللہ اللہ اپنے کرم سے ہمیں رمضان بھی عطا کریں گے. کوئی بڑی چیز آنے والی ہوتی ہے تو اس کے لیے تیاری بھی بڑی ہوتی ہے. بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی اعتبار سے جب سال شروع ہوتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے، تب ہی سے اللہ تعالی کے یہاں رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. اب آپ سوچئے کہ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولا، جمادی الاخرا، رجب، شعبان، کتنے مہینے باقی ہیں رمضان کے آنے میں. لیکن اللہ تعالی کے یہاں تقریباً 9 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. कि उम्मते मोहम्मदिया रमजान में इबादत करे और अल्लाह उसको बदले में जन्नत अता करे, इसलिए अल्लाह ताला जन्नत को डेकोरेट करना शुरू कर देते हैं, सजाना शुरू कर देते हैं 8-9 महीने पहले से। तो इससे हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि अल्लाह के यहां रमजान की कितनी बड़ी कीमत होगी। मेरे और आपके प्यारे आका अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हर महीने का पहला चांद देखते थे तो दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन वल ईमान, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युम्न वल ईमान। ये दुआएं जो हदीस में आई है ये हमें याद करके वक्त वक्त पढ़ना चाहिए। इन दुआओं में बहुत बरकत अल्लाह ने रखी है। अब आप सोचो कि महीना शुरू हो, पहला चांद हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़े, कितनी जबरदस्त दुआ है कि अल्लाह ये जो चांद निकला पहली तारीख हुई तो पूरा महीना अमन वाला, सलामती वाला, बरकत वाला आप मेरे लिए बना दीजिए। तो पूरे साल हर महीने के चांद को देखकर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाह इस चांद को अमन वाला, बरकत वाला, सलामती वाला और इस्लाम पर अमल वाला बना दीजिए। लेकिन जब रजब का चांद होता था तो एक ज्यादा दुआ भी मांगते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, अल्लाह अब तो रजब आ गया, उसके बाद शाबान है, उसके बाद रमजान है, अल्लाह आपने मुझे रजब तक पहुंचाया, इतनी जिंदगी दी तो 2 महीने मेरी उम्र में और बरकत दे दो और मुझे रमजान की इबादत से मालामाल करो। तो 2 महीने पहले से हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के लिए बाकायदा अल्लाह से दुआ करते थे। अब ये दोनों हदीस जहन में रखिए। एक हदीस में मजमून ये आया कि मुहर्रम का महीना शुरू हुआ, 8-9 महीने रमजान में बाकी है और अल्लाह ताला के यहां जन्नत को सजाना चालू करते हैं, डेकोरेशन शुरू करते हैं कि भाई उम्मत रमजान के अंदर नेक आमाल करेगी लिहाजा उनको जन्नत देने के लिए तैयारी शुरू करो। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले से रमजान की दुआ मांगते थे, लिहाजा जो अल्लाह का सच्चा बंदा होगा, नबी का सच्चा उम्मती होगा, वो भी रमजान से पहले रमजान की तैयारी शुरू करेगा। इसीलिए आप देखिए कि जो अल्लाह ताला के सच्चे बंदे होते हैं, इबादत करने वाले बंदे होते हैं, उनको बहुत पहले तैयारी हो जाए, उनके यहां चालू हो जाती है, वही रमजान आ रहा है, तरावी हम कहां पढ़ेंगे, कहां अच्छी तरावी हमको पढ़ने को मिलेगी, कहां बेहतरीन कुरान पढ़ने को मिलेगा, हम लोग रमजान के अंदर कैसे उम्रे में जाएंगे, रमजान के अंदर कैसे खैरात करेंगे, सारी प्लानिंग वो लोग बहुत पहले शुरू कर देते हैं। ये रमजान के लिए पहले से तैयारी करना ये अल्लाह को पसंद है और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको रमजान की कोई पड़ी नहीं होती, बिल्कुल रमजान आ रहा है, 4 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, अरे चांद नजर आ गया, ऐलान हो गया, कोई पड़ी नहीं उनको, कि इतनी बड़ी नेमत आ गई, इतना मुबारक महीना आ गया, उनको कोई खुशी नहीं होती, उनके लिए रोजा रखना और दूसरी इबादत करने की कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई तैयारी नहीं होती, बल्कि अल्लाह हिफाजत में रखे। बाज लोग ऐसे होते हैं कि रोजा आने के ऊपर वो लोग नफरत करते हैं कि अब तक खाते थे पीते थे, अब कल से दोपहर में खाना बंद हो जाएगा, सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट बंद हो जाएगा, हमारी इवनिंग टी बंद हो जाएगी। बाज लोग जो है नाराज होते हैं बाकायदा कि अब सारी पाबंदी हमारे ऊपर आ जाएगी। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे ऐसा मिजाज ऐसी सोच अता फरमाए कि हम रमजान को खुशी खुशी उसका इस्तकबाल करें, उसको वेलकम करें और उसके लिए तैयारी करें कि अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा मुबारक महीना रमजान का आ रहा है। फजाइल के अंदर आपने तालीम में सुना होगा कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा रमजान से पहले खुतबा दिया, बयान फरमाया और लोगों को रमजान की अहमियत बतलाई कि एक बड़ा मुबारक महीना रमजान का आ रहा है। अब रमजान में अल्लाह की बरकतें शुरू होगी। हदीस में आता है कि पहला अशरा रहमत का, पहले 10 दिन में अल्लाह ताला रहमतें उतारते हैं। अब अल्लाह की रहमत एक ऐसी चीज है कि उसको लेने के लिए हमारे अंदर तैयारी भी होनी चाहिए। अब कुरान के अंदर रहमत का लफ्ज बारिश के लिए भी आया है, वहुवल लजी युनज़िलुल गैस मिन बादी मा कनतु वयंशुरु रहमता। रहमत बारिश के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब जो फार्मिंग करने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग, वो लोग जब बारिश का वक्त आने वाला होता है तो अपने फार्म में तैयारी चालू करते हैं, उसके अंदर ट्रैक्टर चलाएंगे, उसके लिए सीड्स लेकर के आएंगे, फर्टिलाइजर्स लाएंगे और उसके लिए दूसरी तैयारी करेंगे कि अभी बारिश आएगी, पहले से फार्म को बिल्कुल तैयार करो ताकि बारिश आते ही मेरे फार्म के अंदर बारिश आएगी तो बेहतरीन खेती तैयार हो जाएगी, उसके अंदर चावल गेहूं सब तैयार हो जाएगा। तो पहले से तैयार करते अपने फार्म को। रमजान का पहला रोजा पहली रात होगी और अल्लाह ताला की तरफ से रहमत की शुरुआत होगी। अब उस रहमत को लेने के लिए हमें भी तैयारी करनी ताकि अल्लाह की रहमत हमको पूरे पूरी मिल जावे। और रहमत अल्लाह की लेने के लिए सबसे पहली तैयारी ये करनी है कि हमें 11 महीने के अपने गुनाहों पर अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करनी है, सच्ची पक्की तौबा के अल्लाह 11 महीने तक मैंने बहुत गुनाह किए, बहुत बेअदबी की, बहुत गुस्ताखी की, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को आप माफ कर दीजिए। हम गुनाह के ऊपर माफी मांग करके तौबा करके अपने दिल को तैयार कर लेवे अल्लाह की रहमत को लेने के वास्ते। इसलिए कि एक हदीस आपने सुनी है बार बार कि हमारा जो दिल है, दिल उस दिल को अल्लाह ने बहुत अजीब बनाया है। जब एक आदमी एक गुनाह करता है तो दिल के ऊपर काला निशान बन जाता है, काला काला। अगर तौबा करता है तो वो काला निकल जाता है, तौबा नहीं करता तो वो काला बाकी रहता है। फिर दूसरा गुनाह करता है तो दूसरा काला निशान बनता है, फिर तीसरा गुनाह करता है तो तीसरा काला गुनाह काला धब्बा लगता है। अजीब अल्लाह ने इंसान का दिल बनाया, जाहिर में गुनाह करे और बातिन के अंदर दिल के ऊपर उसका असर होवे। सबसे अजीब चीज है। अब इंसान तौबा करता है, अभी हमारे सफेद कपड़े मैले हो जाए तो उस पर पानी डालो तो धुल जाएंगे, दिल काला हो जाए उस पर तौबा का पानी डालो तो दिल धुल जाएगा, और तौबा का पानी नहीं डालोगे तो दिल के ऊपर काला रंग पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा कि पूरा दिल काला बन जाएगा। अभी जो दिल हमारा काला बन जाता है, इस दिल के काले रंग को दुनिया का कोई मशीन नहीं दिखा सकता है। कि आप किसी कार्डियक हॉस्पिटल में जावे, किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जावे, कोई सोनोग्राफी लगावे और चेक करावे कि मेरे दिल के अंदर कितना काला रंग है, ऐसी कोई मशीन दुनिया के पास नहीं है। ये पता कैसे चलेगा? अल्लाह के नेक बंदों ने कुछ निशानी बतलाई, उसके जरिए पता चलता है मेरा दिल कितना काला है। मैं आपको भी वो निशानी बतलाता हूं। हर एक आदमी अपने दिल के बारे में फैसला कर सकता है कि मेरा दिल कितना काला है, पूरा काला है, आधा काला है, पाव क्वार्टर काला है। खुद आदमी फैसला कर सकता है अपने दिल के बारे में। अगर अपने अंदर ये निशानी है तो हमें अपने दिल को साफ करने की बहुत जरूरत है। एक निशानी किताबों में अल्लाह वालों ने ये बयान फरमाई कि इंसान को नेक काम करने के अंदर दिल न लगे और गुनाह करने के अंदर दिल लगता हो तो समझ लो कि मेरा दिल काला बन चुका है। नेक काम करना हो तो अच्छा नहीं लगता, बहुत भारी लगता है। मस्जिद में नमाज पढ़ने आना, पढ़ने जाऊं कि न जाऊं, पढ़ने जाऊं कि न जाऊं, बस बाज मरतबा तो मस्जिद के करीब आ गया, टन मारने वाला था, इतने में से बाद में पढ़ लूंगा, फिर पढ़ लूंगा, नमाज कजा हो गई, कजा पे कजा होती चली गई। कोई भी नेकी का काम आदमी को करना अच्छा न लगे और गुनाह का काम करना बड़ा अच्छा लगता है, कोई भी गुनाह का काम फौरन अच्छा लगता है, अरे ये तो करना ही है, तो समझ लो कि मेरा दिल काला हो चुका है। अब हर आदमी अपने बारे में खुद फैसला कर सकता है कि अच्छा और नेक काम करना हमें अच्छा लगे, नमाज पढ़ना, तिलावत करना, तस्बीह पढ़ना, दुआ करना, अल्लाह के सामने रोना, अल्लाह के सामने आंसू बहाना, सदका खैरात करना अच्छा लगता है, तो समझ लो कि हमारे दिल के अंदर सफाई है, दिल सफेद है, दिल चमकता हुआ है। और अगर दिल के अंदर कोई भी नेक काम करना बहुत भारी लगता है तो समझ जाओ कि दिल के ऊपर काला रंग आ गया है, ब्लैक कोटिंग हो चुका है और दिल के अंदर गुनाह का कालापन छा गया है। बहुत बड़ी निशानी है। इसलिए इंसान का दिल जब काला हो जाता है तो फिर किसी अच्छे काम में दिल नहीं लगता, तो फिर रमजान में तरावी में भी दिल नहीं लगता। इसीलिए आप देखो कि बहुत बड़ा मजमा ऐसा होता है जो तरावी के वक्त के ऊपर खेलते रहेंगे, व्हाट्सएप पर खेलेंगे, मोबाइल पर खेलते रहेंगे, पीछे बातें करते रहेंगे, पार्किंग में बैठ करके खाते पीते रहेंगे, बहुत मस्ती करते रहेंगे। ये बहुत बड़ी निशानी है कि उनका दिल काला है, दिल के अंदर नेकी की मोहब्बत नहीं है। कितनी दुख की बात होती है कि यहां हाफिज साहब कुरान पढ़ रहे हैं, मुसल्ले पर कुरान सुना रहे हैं, बेहतरीन कुरान हो रहा है और मुसलमान पीछे बातें करे, पीछे खेलते रहे। ये तो मक्का के काफिरों की निशानी है। कुरान में कि मक्का के काफिरों की आदत क्या थी, जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में कुरान के लिए खड़े होते थे, उसमें मक्का के अंदर बाकायदा जमात से नमाज पढ़ने का निजाम नहीं था। मक्की जिंदगी में जमात से नमाज का बाकायदा निजाम नहीं था, बहुत तकलीफ थी, इसलिए कि सारे काफिर लोग वो नमाज नहीं पढ़ने देते थे, परेशान करते थे, कभी मौका हुआ कभी नहीं हुआ, कभी पढ़ने दिया कभी नहीं पढ़ा, बाकायदा नमाज बा जमात का कोई निजाम नहीं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को आकर के तहज्जुद में कुरान पढ़ते थे, अकेले अकेले खड़े खड़े, कभी दिन में भी पढ़ते तो काफिर लोग क्या करते, शोर मचाते, तालियां बजाते, सीटी बजाते, और कुरान में अल्लाह ने फरमाया वकाल अल्लदीन कफरु ला तस्मउ लिहाज़ल कुरआन वल्गौ फीही लअल्लकुम तगलिबून। काफिर लोग आपस में एक दूसरे को कहते हैं नबी का कुरान मत सुनो, बकवास करो, बकबक करो, बातें करो, हमारी बात की आवाज गालिब हो और इनकी कुरान की आवाज दब जानी चाहिए, ये तो काफिरों का अमल है जो आज नऊज़ुबिल्लाह मुसलमानों में पाया जा रहा है। ये इस बात की निशानी है कि दिल के ऊपर काला रंग है, इसीलिए हमें नमाज अच्छी नहीं लगती। अब वही आदमी कि जिसको तरावी में खड़े रहना भारी लगता है, लेकिन उसको कहेंगे बैडमिंटन की मैच हो रही है, उसको कहो फुलान जगह के ऊपर कोई खास खेल हो रहा है, तो वहां उससे डबल वक्त वो खड़ा रहेगा और उसको कोई तकलीफ भी नहीं होगी और पूरे ध्यान से वो मैच को खेल को देखता रहेगा। और यहां कुरान के लिए खड़ा होना का पैर में दर्द है, ये तकलीफ है, ध्यान नहीं लगता, ये सब बहाने लोग करते हैं। दीनी भाइयों, ये बहुत बड़ी महरूमी की बात है, बहुत बड़ी महरूमी की बात जो आज मुसलमानों के अंदर हो रही है। लोगों को समझाना चाहिए कि कुरान तरावी में पढ़ा जाता है, रमजान का मुबारक महीना है, रमजान की रहमत की रातें हैं, ये खेल, ये मोबाइल, ये पीछे बैठ करके बातचीत की मजलिस और कार पार्किंग वगैरह के अंदर खाने पीने, ये तमाशे नहीं, बल्कि मस्जिद में आकर ध्यान से कुरान सुने, अल्लाह के सामने दिल लगावे, तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत मिलेगी, रहमत मिलेगी। और ये अल्लाह ताला ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया कि दिन भर अल्लाह ने रोजा रखवाया और रोजाना रात को तरावी के अंदर सिजदों का चिल्ला लगवाया। सिजदों का भी चिल्ला हुआ करता है, 20 रकात हम पढ़ेंगे, हर रकात में 2 सिजदे करेंगे तो 20 रकात में 40 सिजदे होंगे। रमजान में अल्लाह ताला रोजाना तरावी के अंदर सिजदों का एक्स्ट्रा चिल्ला लगवाते हैं रोजाना। अब कितना वो बंदा अल्लाह का प्यारा हो जाएगा जो रोजाना रात को सिजदे का चिल्ला लगावे, 40 सिजदे रोजाना अल्लाह के सामने करे, तो अल्लाह की कितनी मोहब्बत उसके दिल में आएगी, अल्लाह की कितनी रहमत उसके दिल में आएगी, अल्लाह की तरफ से कितनी बरकत उसके पास आएगी, अंदाजा लगाओ। तो दीनी भाइयों, रमजान से पहले या रमजान शुरू होते ही हमें सबसे अहम इम्पोर्टेंट काम ये करना है कि 11 महीने में जो गुनाह हुए उसके ऊपर अल्लाह के सामने रो धो के सच्ची तौबा करनी है, ताकि अल्लाह सुबहानहू व ताला की तरफ से रमजान की रहमतें हमारे लिए लेना आसान हो जाए। ये सबसे पहला काम करना है। इसीलिए आप सबको मैं कहता हूं, एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि रमजान से 1-2 दिन पहले आप 2 रकात कम से कम सलातु तौबा पढ़ दो, कम से कम 2 रकात सलातु तौबा, और 2 से ज्यादा पढ़ो, मसलन अल्लाह तौफीक देवे आज से शुरू कर दो, कि आज से लेकर पहली रमजान तक रोजाना दो रका सलातु तौबा पढ़ूंगा, ए अल्लाह मेरे 11 महीने के गुनाह को माफ कर दीजिए, ए अल्लाह गुनाह करते करते मेरा दिल काला हो चुका है, मुझे माफ कर दीजिए। हम माफी मांग लेवे ताकि पहले रोजे से जो रमजान की रहमतें आएगी वो अल्लाह ताला की तरफ से सीधे हमारे दिल दिमाग पर असर करेगी। कौन नियत करता है कि मैं रमजान से पहले सलातु तौबा पढ़ूंगा? माशाल्लाह लजीज, कम से कम एक मर्तबा तो पढ़ लो, और आज से रोजाना पढ़ो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और यही चीज अल्लाह ने कुरान में फरमाई, या अय्युहल्लजीना आमनू तूबू इलल्लाही तौबतन नसूहा। ए लोगो, अल्लाह के सामने तौबे नसूह करो, तौबे नसूह। अब ये तौबे नसूह किसको कहते हैं वो भी समझने की चीज है। बहुत से माने उसके मुफस्सिरीन ने बयान किए, एक माना उसका ये है कि मिन सहा अरबी जबान में सुई को कहते हैं, सुई जो कपड़ा सीने के काम में आती है। और सुई का काम ये है कि दो चीज को जोड़ना, कैंची होती है, कातर होती है, वो काटने का काम करती है, और सुई जो है वो जोड़ने का काम करती है। और उसके ऊपर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात है लतीफा और जॉक्स के अंदाज की, लेकिन है एक बुजुर्ग की नसीहत की बात। हमारा जो ये सिलसिला है उसमें सिलसिले चिश्तिया में एक बुजुर्ग है, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, दिल्ली के अंदर उनका मजार है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, उन्हीं के नाम से दिल्ली के अंदर एक रेलवे स्टेशन भी है। हजरत निजामुद्दीन बड़े अकाबिर में, बुजुर्गों में गुजरे हैं, सिलसिले चिश्तिया के अकाबिर में है। एक मरतबा हजरत का एक मुरीद हजरत के लिए कैंची यानी कातर वो हदीये में लेकर के आया। अल्लाह वालों के यहां लोग हदिया लेकर पहुंचते, तो कैंची लेकर गया। हजरत ने ली हाथ में कैंची और उसके बाद बहुत मोहब्बत से फरमाया, प्यारे तू कैंची लाया मेरे लिए हदीये में, ये तो बहुत बड़ी चीज है, एक छोटी सी सुई ले आता तो अच्छा होता। इसीलिए कि ये कैंची जो है वो काटने का काम करती है और सुई जो है वो जोड़ने का काम करती है, और हमें जोड़ने वाला बनना चाहिए, काटने वाला नहीं बनना चाहिए। ये हजरत का ये जुमला हम सब के लिए बहुत नसीहत है कि हम काटने वाले न बने बल्कि जोड़ने वाले बने, ये मिजाज हमें बनाना चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको जोड़ पैदा होने का जरिया बनावे, और अल्लाह काटने वालों में से कभी हमको न बनावे। ये काटने वाले बड़े खतरनाक लोग हुआ करते हैं। तो नसू मिन सहा सुई को कहते हैं। अब तौबे नसू का क्या माना होगा? ऐसी तौबा करो कि बंदा अल्लाह के साथ जुड़ जावे, जैसे कि सुई जोड़ने का काम करती है, इस तरह ऐसी तौबा कि अल्लाह आज तक मैंने जो कुछ गंदगियां की, बुरे काम किए, गंदे आमाल किए, मैं उसको छोड़ता हूं और आज से मैं तुझसे जुड़ जाऊंगा, तुझसे कनेक्ट हो जाऊंगा, तेरे साथ मेरा ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। इसको कहते हैं सच्ची पक्की तौबा। देखो एक बात याद रखना, शैतान हमको एक बात समझाता है कि तौबा करना यानी गुनाह नहीं करना, ये गलत बात है, याद रखना। गुनाह ही नहीं करना ये गलत बात है। अल्लाह सुबहानहु व ताला ने इंसान को तौबा करने का हुक्म दिया है कि तौबा करो। नबी के अलावा तमाम इंसान ऐसे हैं कि उनका मिजाज, उनकी तबीयत, उनका नेचर, उनकी फितरत अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि वो गुनाह करते हैं। गुनाह तो होना ही होना है। नबी की जात ऐसी है कि उनसे गुनाह नहीं होते, बाकी हर एक इंसान से गुनाह होते ही होते हैं। इसीलिए कोई इंसान ये समझे कि मैं गुनाह ही नहीं करूं, ये तो इम्पॉसिबल है। याद रखना, गुनाह करूं ही नहीं ये हो ही नहीं सकता। ये तो नबी का मामला है कि अल्लाह ताला नबी को गुनाह से बचा के रखते हैं, नबी गुनाह से मासूम होते हैं। हमसे तो गुनाह होने ही वाले हैं, इसीलिए हम फजाइल रमजान में एक हदीस सुनते हैं कि रमजान के मुबारक महीने के अंदर शैतान को अल्लाह ताला कैद में जकड़ देते हैं, और फिर वहां बहस होती है कि बड़े शैतान को अल्लाह कैद करते हैं कि छोटे छोटे शैतान भी कैद होते हैं। इसीलिए कि रमजान में हम देखते हैं कि बहुत से इंसान गुनाह करते हैं, बुराई के काम करते हैं, तो समझ में नहीं आता कि एक शैतान तो जेल में चला गया, फिर ये गुनाह कहां से होते हैं। तो बाज़ हजरात ने उस हदीस की तशरीह की कि बड़े शैतान को तो अल्लाह ने जेल में डाल दिया, लेकिन छोटे छोटे वो होते हैं, वो गुनाह करवाते हैं। बाज़ हजरात ये कहते हैं कि हमारा नफ्स जो है वो 11 महीने तक शैतान की सोहबत में रहा, इसीलिए वो हमारे पास गुनाह करवाता है। लेकिन इस जमाने के अंदर इसमें एक चीज और मिलानी चाहिए कि शैतान को अल्लाह ताला कैद करते हैं तो साथ में हमें नेट के कनेक्शन को रमजान में कट कर देना चाहिए। ये नेट के शैतान को रमजान में कट कर देना चाहिए, इसलिए कि ये शैतान का गेट है, ये नेट शैतान का गेट है। अगर कोई आदमी रमजान के मुबारक महीने के अंदर अल्लाह उसे हिम्मत देवे और यूं कह देवे कि एक महीना नेट इस्तेमाल नहीं करना है, तो मेरे ख्याल में 50-60% वो गुनाह से इंशाल्लाह बच जाएगा, बहुत सारे गुनाहों से बच जाएगा जिस गुनाह का ताल्लुक ये नेट से लगा हुआ है। तो इस मुबारक महीने के अंदर हम सबको सबसे बड़ा हिम्मत का काम ये करना है कि अपने आप को गुनाह से बचाना और अल्लाह से जुड़ जाना। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तौबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह के सामने सच्ची पक्की तौबा करो, ऐसी तौबा के अल्लाह से जुड़ जाओ, ऐसी तौबा हमें करनी। और दूसरी एक अहम बात यह है कि आज इस मजलिस में बैठकर हर साथी ये नियत कर ले कि इस साल रमजान में कम से कम 70,000 मरतबा में ला इलाहा इल्लल्लाह जरूर पढ़ूंगा। कहो इंशाल्लाह। क्यों 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों? फजाइले जिक्र में हमें तालीम बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। फजाइले जिक्र में हजरत ने एक हदीस नकल की है कि जो आदमी 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के किसी मरने वाले को ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह ताला उस मरने वाले की मग़फ़िरत कर देते हैं। इसीलिए बाज़ जगहों के ऊपर जब किसी का इंतकाल होता है तो यासीन का कुरान का खत्म नहीं होता, बल्कि वो दाने बिछा देते हैं कि भाई 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो और मरहूम को ईसाले सवाब कर दो ताकि उसकी अल्लाह की यहां मग़फ़िरत हो जाए। बहुत से घरों के अंदर भी ये सिस्टम हमने देखी और उसमें बड़ी भलाई है कि किसी का इंतकाल होता है ना, तो जब तक जनाजा होता है वहां तक तो लोग थोड़ा बहुत अदब और लिहाज करते हैं, और जनाजा लेकर के जब चले गए उसके बाद पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन लोग जमा होंगे और इबादत, दुआ, ईसाले सवाब कम करेंगे और इधर उधर की गीबत और बातें ज्यादा करते हैं। उससे बेहतर उनको एक टारगेट दे देने का कि 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह 3 दिन के अंदर पूरा करना है, खास तौर पर औरतों को वहां जो है रख देने की, भाई ये तस्बीह है, ये नोटबुक है, जो जितनी मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े यहां नोट करते जावे ताकि 70,000 पूरा हो जावे। ये तजुर्बा कर लो तो इंशाअल्लाहुल अजीज ये जो मैयत के घरों के अंदर बैठ करके लोग इधर उधर की बातें करते उस पर बड़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, काबू हो जाएगा। जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो मैंने तस्बीह रखवा दी, कि कोई भी आवे उसको कहो तस्बीह पढ़ो, और पढ़ते पढ़ते थक जावे तो उठ के चले जाओ अपने घर, कोई यहां बैठे नहीं। पढ़ना हो तो तस्बीह पढ़ो, वरना उठ के अपने अपने घर चले जाओ। यहाँ खाना वाना किसी को मिलने वाला नहीं है, वरना लोग तीन दिन तक जो है मरने वाले के ऊपर खाने की पार्टियां भी करते हैं बाज जगहों पर। हालांकि हदीस शरीफ से एक ही दिन का खाना साबित है। जब गज़वे मूता के अंदर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा जात भाई शहीद हुए थे, तो हुजूर ने एक दिन के लिए फरमाया था कि उनके घर के ऊपर खाना पका करके भेज दो। तो एक दिन का खाना हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, लेकिन लोग खामोखा तीन दिन बाद जगह सात दिन खाने पीने की महफिलें करते रहते हैं, बैठकर गीबतें करते रहते हैं। इससे बेहतर है इनको एक टारगेट दे देने का कि तस्बीह पढ़ो बैठ करके। तो ये हदीस है कि 70,000 मरतबा 70,000 ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के किसी मरहूम को इशारे सवाब कर देवे तो अल्लाह ताला उसकी मगफिरत कर देते हैं। हमारे हजरत उस्ताद और मुर्शिद सानी मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया फरमाया करते हैं कि भाई आज का जमाना बड़ा बेवफाई का जमाना है, बड़ी बेवफाई का जमाना है। किसी का इंतकाल हो जाए फिर कौन किसके लिए इतनी मर्तबा पढ़ के भेजे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं मस्जिद में बैठा हूं अल्लाह के घर में, एक बहुत मालदार आदमी का इंतकाल हो गया, बहुत मालदार आदमी का, वो भी अर्थक्वेक के अंदर वो दब के मर गया था। हमारे यहां गुजरात में 2000 के अंदर बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था और उस अर्थक्वेक में बहुत आदमी शहीद हो गए थे, इंतकाल कर गए थे। उस जमाने के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक इंतकाल हो गया, तो उसके बेटे को मैंने जाकर कहा भाई तुम्हारे अब्बा जान का इंतकाल हो गया, अब्बा के ऊपर हज फर्ज थी, अब तो बेचारे ने जिंदगी में हज अदा नहीं की, मेरा बिजनेस मेरी फैक्ट्री टाइम नहीं मिलता, हज में कैसे जाऊं, आइंदा साल नेक्स्ट ईयर करते करते वो हज में गया नहीं और दब के मर गया। तो तुम जो है मरहूम की तरफ से हज फर्ज बदल करवा दो, बेचारे को अल्लाह के यहां नजात हो जाएगी और जो हज का फरीजा बाकी रह गया। मैं इस वक्त मस्जिद में हूं, मैंने उन बच्चों को नसीहत की तो उन बच्चों ने नौजवान लड़कों ने जवाब दिया कि मुफ्ती साहब हमारे बाप ने खुद हज नहीं की तो हमें भी कोई परवाह नहीं है, हम भी उसकी तरफ से हज नहीं कराएंगे, अगर उसको करना था तो जिंदगी में खुद कर लेता, उसने नहीं की तो हमें क्या पड़ी है कि हम उसकी तरफ से हज करवाएं। सभी औलाद बाप की तरफ से फर्ज हज करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हमारे इंतकाल के बाद कोई 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के भेजे उसकी कोई गारंटी नहीं। अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई, रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, अपने लिए 70,000 ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के अल्लाह की बैंक में जमा करा दो ताकि अल्लाह ताला के यहां हमारी मगफिरत की बात पक्की हो जाए। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि इस आने वाले रमजान में कम से कम 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह हर एक आदमी पढ़ लेवे और अपने लिए अल्लाह की बैंक में जमा करा देवे। नियत करते हो उसकी? कौन इरादा करता है हाथ उठाओ कि इस साल इस रमजान में 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह में पढ़ूंगा और अपने लिए अल्लाह की बैंक में जमा करा दूंगा। तो पूरी बात का खुलासा यह है कि रमजान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। पिछली दो रमजान कैसी गुजरी सारी दुनिया ने देखी, इस साल इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बड़ी आफियत वाली रमजान इंशाल्लाह रहेगी। और मामूल के मुताबिक हम मस्जिदों में तरावी पढ़ेंगे, एतिकाफ करेंगे, आमाल होंगे, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होगा, बहुत बड़ा करम होगा। बाकी पिछली दो रमजान उम्मत की कैसी गुजरी दुनिया जानती है, कैसे हालात में गुजरी। इसीलिए दीनी भाइयों ये 2 साल में बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए, इंतकाल कर गए। अल्लाह ने मुझे और आपको उम्र में बरकत अता फरमाई और एक रमजान अल्लाह मुझे और आपको अता फरमा रहे हैं, इसकी कदर कर आने वाली रमजान की। अगर हमको जिंदगी अल्लाह न देते तो हम भी आज कब्रिस्तान में जाके सो गए होते। कोरोना एक बुखार का नाम, फिर आगे बढ़ते बढ़ते आदमी कब्रिस्तान चला जाता, इंतकाल कर जाता। अल्लाह का एहसान हुआ, अल्लाह ने जिंदगी दी, उम्र अता फरमाई, पता नहीं आइंदा दूसरा रमजान किसको देखने को मिले, किसको देखने को न मिले, हम कोई नहीं जान सकते। इसीलिए अभी इसे नियत कर लो और एक अच्छी प्लानिंग करो कि इस रमजान में मैं कितने कुरान मजीद खत्म करूंगा तिलावत में। फजाइले कुरान में हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया है कि 2 मरतबा साल में कुरान को तिलावत में मुकम्मल करना ये कुरान का हक बनता है। कुरान का हक है कि साल में 2 मरतबा तिलावत में हम मुकम्मल करें। अल्लाह आपको हिम्मत देवे तो 20 खत्म करो। लेकिन मैं तो ये जनरल मुसलमानों को सामने रखकर हजरत इमाम अबू हनीफा की बात सुना रहा हूं कि कम से कम 2 मरतबा हम कुरान मजीद को तिलावत में मुकम्मल कर ले रहे, ये तो कुरान का हक बनता है। लिहाजा कम से कम ये 3 काम की नियत कर लो। एक तो रमजान से पहले सलातुत तौबा पढ़ोगे, सलातुत तौबा। दूसरी चीज 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पूरी करना। और तीसरी चीज कम से कम 2 मरतबा कुरान मजीद को तिलावत के अंदर मुकम्मल करना, ये कुरान मजीद का हक है। इसलिए कि साल के 11 महीने तो अल्लाह जानते हैं और हम जानते हैं कि हम कितनी तिलावत करते हैं। एक रमजान के मुबारक महीने में कुछ न कुछ तिलावत की तौफीक हो जाती है, लिहाजा हमें तिलावत का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला आने वाले रमजान को मेरे लिए, आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए रहमत और बरकत का जरिया बना दे रहे। और भाइयों, इस वक्त पूरी दुनिया के जो हालात है वो मेरे और आपके सामने हैं, उस पर कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कितने खतरनाक हालात से मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर गुजर रहे हैं। हमारे पास सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो दुआ की ताकत है, सबसे बड़ी ताकत दुआ की है। अब पूरे साल तो अल्लाह हमारी फजर पर रहम करे, अब रमजान का महीना ऐसा है कि इसमें तहज्जुद भी हमारे लिए आसान है। हम सहरी के लिए उठे तो 4 रकात 6 रकात 8 रकात तहज्जुद की नमाज अदा कर ले। और तहज्जुद घर में पढ़ना अफजल है मस्जिद के अंदर पढ़ने के मुकाबले में, क्योंकि तहज्जुद नवाफिल में से है और नवाफिल घर में अफजल है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, और उसका एक मतलब यही है कि घर में कुछ न कुछ इबादत होनी चाहिए। तो घर में एक माहौल बनाओ कि हर एक आदमी, कोई खाने से पहले कोई खाने के बाद, लेकिन तहज्जुद की नमाज जरूर पढ़े और तहज्जुद के बाद अल्लाह के सामने रो रो करके दुआ करे अपने लिए और पूरी दुनिया के ईमान वालों के वास्ते। ये दुआ हमारी हालात को बदलने के अंदर बहुत ज्यादा ताकत वाली चीज है, बहुत ज्यादा ताकत वाली चीज है। इसीलिए ये नियत कर लो कि पूरी रमजान तहज्जुद पढ़ेंगे, कहो इंशाल्लाह पूरी रमजान, और रोजाना तहज्जुद के साथ रोना, अल्लाह के सामने आंसू बहाना, इसका एहतमाम कर लो। और अपने अकेले के लिए दुआ नहीं, पूरे आलम के ईमान वालों के लिए। उम्मत बहुत कठिन हालात से इस वक्त पर गुजर रही है, अल्लाह हमारी दुआओं की बरकत से मुसीबतों को दूर फरमाएंगे। अल्लाह मुझे आपको इन कही सुनी बात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बात को मुकम्मल करते करते एक हदीस सुनाना चाहता हूं, इसीलिए आपको एक सवाल करता हूं, आप में से कौन चाहता है कि मौत के बाद डायरेक्ट जन्नत में जावे, हाथ उठाओ। कौन चाहता है? माशाल्लाह सब चाहते कि मौत के बाद डायरेक्ट जन्नत में जावे। तो मस्जिद में बैठ करके प्रॉमिस करो कि एक हदीस पर अमल करेंगे। करोगे अमल तो सुनाओ आपको, अमल करोगे हदीस से, हदीस पाक है, कई हदीस की किताबों में ये रिवायत है और आसार सुनन में अल्लामा नेमवी ने इमाम हैसमी के हवाले से नकल किया है कि इस हदीस की सनद सही है। हदीस में ये आता है कि जो मुसलमान हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेवे, अल्लाह ताला उसको मौत के बाद सलामती से जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। हदीस शरीफ में आता है कि जो मुसलमान हर फर्ज नमाज के बाद, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ोगे, आयतुल कुर्सी, तो अल्लाह ताला मौत के बाद उसको सलामती से जन्नत का दाखला अता करेंगे। तो इसी मजलिस मगरिब के बाद हो रही है और जिसने भी मगरिब के बाद आयतुल कुर्सी न पढ़ी हो वो अभी पढ़ लेवे दुआ से पहले, ताकि अभी से अमल शुरू हो जाए। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ, आप लोग भी सुन लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुदुहु सिनतुन वला नौम, लहु मा फिस समावाति वमा फिल अर्ض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العظيم। तो हदीस शरीफ ज़हन में रहेगी, हर फर्ज नमाज के बाद क्या पढ़ना है, आयतुल कुर्सी, अल्लाह इसकी बरकत से मौत के बाद सलामती से जन्नत अता करेंगे। और ये तो बुखारी शरीफ की हदीस है कि रात को बिस्तर पर बैठ करके आयतुल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह की तरफ से एक हिफाजत करने वाला आएगा जो पूरी रात हमारी हिफाजत करेगा। तो ये अल्लाह की तरफ से हिफाजत मिल जाए तो ये बहुत बड़ी नेमत है। लिहाजा टोटल 6 मरतबा आयतुल कुर्सी का मामूल बना लो, कम से कम हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा और रात को बिस्तर पर बैठ करके करोगे अमल इन चीज के ऊपर। अल्लाह ताला हम सब की इस बात को पर अमल करने की हमें इस्तेकामत और पाबंदी अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लो भाई, दुआ के सिलसिले में एक बात ये याद रखो, हमारे यहाँ आम तौर पर दुआ के वक्त ऐलान होता है कि दुरूद शरीफ पढ़ो दुआ होती है, इस तरतीब को जरा बदलने की जरूरत है। हदीस में आता है कि अल्लाह की हमद करो फिर दुरूद शरीफ पढ़ो, ये हदीस में तरतीब आई है, लिहाजा हमें पहले अल्लाह की हमद करनी फिर दुरूद शरीफ पढ़ना। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। ए अल्लाह आने वाले रमजान को हमारी जिंदगी में तकवा के पैदा होने का जरिया बना। ए अल्लाह आज तक बहुत रमजान गुजर गए लेकिन ए अल्लाह हमें तकवा हासिल कामिल नहीं हुआ। ए अल्लाह इस रमजान की बरकत से कामिल तकवा अता फरमाओ, तौबे नसू अता फरमाओ। ए अल्लाह कुरान की तिलावत का एहतमाम अता फरमाओ। ए अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाओ। रमजान के रोजे हमारे लिए आसान फरमाओ, तरावी को आसान फरमाओ। ए अल्लाह हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमाओ। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन शुरूर से पना चाही हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाओ। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।